हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 17। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णातदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानस राजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ता। वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा, पीतांबर वरुण बिंब फल धरोष्ठात्, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानि, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति वेदी सांगपत क्रमोपनिषदे, गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत्कतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी, पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 17। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। धर्मो वा एतद्वः पाण्डवेयानाम् युक्तमाताभयं वचः येषां गुणगुणै कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृते एतद्वः पाण्डवेयानाम् युक्तमाताभयं वचः येषां गुणगुणै कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः एतद्वः पाण्डवीयानां युक्तमाताभयं वचः येषां गुणगुणै कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः एतद्वः पाण्डवीयानां युक्तमाताभयं वचः येषां गुणगुणै कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः शब्दात् धर्म उवाच यानी धर्म ने कहा एतत् ये सारे वह तुम्हारे द्वारा पांडवेयानाम यानी पांडव वंशियों का युक्तम के युक्त आर्त यानी कष्ट भोगने वाला अभयम समस्त भय से मुक्त वचह शब्द येषां गुण गुणाय कृष्ण येषां यानी उन गुण गुणाय योग्यताओं से कृष्ण कृष्ण ने भी दौत्यादौ यानी दूत आदि के कर्म किए भगवान यानी भगवान वो स्वयं भगवान है और कृत संपन्न किए। अनुवाद धर्म ने कहा अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्ति पूर्ण गुणों से मोहित होकर भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि महाराजा परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अति रंजना करने वाले ना थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी भी हों तो भी वे उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे क्योंकि भगवत भक्त भगवान के ही समान और कभी कभी उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होते हैं और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे लेकिन भगवान की कृपा से वह ढंग से पूरा हो जाता है। पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा भगवान को सारथी बनने के लिए या कभी कभी पत्रवाहक बनने के लिए बाध्य किया। भक्तों के लिए भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत ही भाते हैं क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता है। भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित अपने पितामह की ही भांति शुद्ध भक्त थे अतएव भगवान उनके साथ सदैव रहे। यहाँ तक कि जब वे माता के गर्भ में थे और उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था तब भी वे उनके साथ थे। भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है अतएव महाराज द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता था। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद किया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगु लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। पहला स्कंद अध्याय 17, जिसका शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। जब महाराज परीक्षित ने धर्म रूपी बेल को इस कष्टमय अवस्था में देखा, तब उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि वो कौन है जिसने आपकी यह दुर्दशा की है। मैं राजा हूँ और राजा का यह कर्तव्य है कि जो निरपराध और मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं उनको अवश्य दंड दे। आप मुझे खाली ये बताइए कि वो कौन है। अनागस्व भूतेषु यह आगस्क निरंकुश, वो लोग जो निरपराध जीवों पर इस तरह से उदंड होकर आहत करते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं। आहत अस्मि भुजम साक्षात अमर्त्यस्यापि संगतम, वो चाहे अमर्त क्यों न हो, चाहे देवता स्वर्ग में जो रहते ना ऐसे देवता भी क्यों न हो, ये हम जैसे राजाओं का कर्तव्य है कि उनको उचित दंड दें, ताकि वो ये सोच सकें कि किसी ने अपराध को हमें इस तरह से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वो बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। तो यहाँ पर जो परीक्षित महाराज हैं वो धर्म को बहुत आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं उससे बदला जरूर लूंगा जिसने तुम्हारा ये हाल किया है, तुम्हारी ये दुर्दशा की है। तो इस संसार में अब जब हम देखते हैं कि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा होता है, तो अब अत्याचारी जो होता है वो उसको यकीन नहीं होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस वाले हैं, वो पता नहीं हमारी सहायता करेंगे या ना करेंगे। क्योंकि पुलिस वाले अगर कभी सहायता करने की इच्छा भी करते हैं तो भी जो बड़े होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, MPL होते हैं और MLA वगैरह होते हैं, तो वो सब जो इन अपराधियों के साथ मिले हुए होते हैं तो फिर उनको उचित दंड नहीं मिलता। या फिर कभी ऐसा होता है कि जो छोटे पुलिस वाले वगैरह होते हैं वो ही मिले हुए होते हैं, वो ही घूस खाने वाले होते हैं, तो फिर जो निरपराध जनता है उसको सही तरह से इंसाफ नहीं मिलता है, भले कितना ही वो चीखते रहें चिल्लाते रहें। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित उसे आश्वासन दे रहे हैं कि आप फिक्र मत करो, मैं अवश्य उसे दंड दूंगा, आप निश्चिंत होकर मुझे उसके विषय में बताओ कि वो कौन है। राज्यो ही परमो धर्म स्वधर्म स्थान पालनम, एक राजा का परम कर्तव्य यह है कि वो अपने धर्म का पालन करे और अपने जो उसके प्रजा के अंदर जो दुखी हैं, उन जो निरपराध हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं, उनकी संरक्षण करें। तो मैं तुम्हें पूरा संरक्षण प्रदान करूंगा, तुम डरो मत, बताओ किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इतना सुनने के बाद धर्म जो कि बहुत दुखी था, उनके हृदय में थोड़ा आश्वासन हुआ और वो बोलने के लिए शक्ति प्राप्त कर सका और बोलने लगा। धर्म उवाच, आज हमारे श्लोक में धर्म बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं एतद् वह पांडवेयानाम, ये जो आप बोल रहे हो, मुझे जो आश्वासन दे रहे हो वो बिल्कुल युक्त मार्ता भयम वच, एकदम युक्त है, बिल्कुल उपयुक्त है। किसके लिए? पांडवेयानाम, पांडव वंशियों के लिए ये शब्द बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप इस योग्य हो। आर्ता यानी जो कष्ट भोगने वाले, अभयम भय से मुक्त, आप हम जैसे दुखियों को दुख से दुखियों के दुखों को निवृत्त करने में बिल्कुल समर्थ हो। आपने जो भी कहा है, क्या कहा है कि अगर तुम्हें दुख पहुंचाने वाला कोई स्वर्ग का देवता ही क्यों न होगा तो भी मैं उसे दंड दूंगा, तो आप क्योंकि पांडवों के वंशज हो तो ऐसा आपके लिए कर पाना बहुत ही आसान है, आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बहुत बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जब पांडवों के द्वारा ऐसे से कार्य हुए हैं जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। पांडवों ने कभी तो यक्षों को, कभी शिव जी को, कभी इंद्र को, कभी किसी, मतलब इतने बड़े बड़े देवी देवताओं से भी उन्होंने विजय प्राप्त किया। एक बार जब पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया गया था, तो वहां पर वो काम्यक वन में बहुत सारे यज्ञ कर रहे थे। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो दुर्योधन को लगा कि वहां पर वो लोग है ना यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, मैं जाऊं वहां पर, क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि ऐसी थी कि जो भी कुछ करते थे, जब भी कभी पांडवों को आके उनको तंग करना, उनको डिस्टर्ब करना, ऐसा सोचते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं धृतराष्ट्र महाराज से आज्ञा लेकर मैं भी जाता हूं काम्यक वन में। धृतराष्ट्र को जब दुर्योधन ने कहा कि मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, तो धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, उनको छोड़ो, रहने दो, अभी वो लोग मतलब यहाँ पर वो लोग वनवास भोग रहे हैं और तुम वहां पर जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो फिर उनको रहने दो, उधर नहीं जाओ तुम। तभी शकुनी ने उन्हें दुर्योधन को बोला, देखो ऐसे तो धृतराष्ट्र तुम्हें जाने नहीं देगा, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हम राजा हैं, तो हमारा एक ये भी कर्तव्य है कि जो जंगलों में जो पशु हैं उनकी काउंटिंग करने के लिए भी जाते थे, जंगल में कितने पशु हैं, किस तरह से उनका भरण पोषण हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप धृतराष्ट्र महाराज को बोलो कि मैं वो कैटल्स को काउंटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, जो भी पशु हैं उनको। तो इस तरह से जब दुर्योधन ने बताया धृतराष्ट्र महाराज को कि मैं वहां पर पशुओं को गिनना करने के लिए जा रहा हूं, तब धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन उनको पांडवों को जाके वहां पर डिस्टर्ब नहीं करना। तो दुर्योधन तो जैसे प्लान किया था उसने वो गया, काम्यक वन में गया, कुछ स्त्रियों को भी लेके गया, और वहां पर क्या कर रहा था कि जो एक एरिया था जो स्पेशली गंधर्वों का था, तो वहां पर गंधर्व रहते थे, वहां पर आके अपने टेंट वगैरह लगाना शुरू कर दिए और वहां पर आके स्त्रियों के साथ नृत्य इत्यादि सब शुरू कर दिया। तो गंधर्वों ने उन्हें समझाया कि देखो ये हमारा एरिया है, यहां पर तुम कुछ नहीं कर सकते, यहां से निकलो। तब दुर्योधन ने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहां से नहीं निकलूंगा। तब गंधर्वों ने ऐसा सुना तो फिर क्योंकि अब दुर्योधन उनके एरिया में आ गया था, तो गंधर्वों ने दुर्योधन को परास्त कर दिया, उसके साथ युद्ध किया, परास्त किया और बांध दिया, बांध के वहीं पर रख दिया वो। अभी तो जो भी दुर्योधन के कुछ साथी थे वो जैसे तैसे करके छुप के निकल गए और जाके पांडवों को बताया कि दुर्योधन जो है उनको गंधर्वों ने पकड़ लिया है। जब महाराज युधिष्ठिर ने ऐसे सुना तो उन्होंने सोचा कि दुर्योधन की रक्षा करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन भीम ने जब सुना तो भीम को भी खुशी हो रही, देखो ये बहुत ज्यादा है ना शो ऑफ करता है, बहुत ज्यादा अहंकार है ना इसे, अच्छा हुआ इसको गंधर्वों ने पकड़ लिया। तभी युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं भीम, वैसे तो वो पांच हैं, वैसे तो हम पांच हैं और वो सौ हैं, लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति आ जाती है तो हम मिल जाते हैं और 105 बन जाते हैं, वो कुछ भी हो वो हमारे हैं और हम उनको किसी तरह से कष्ट में रहता हुआ नहीं देख सकते, तुमको अर्जुन को जाना चाहिए उनकी सुरक्षा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अभी यज्ञ में बैठे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे, तो दुर्योधन और भीम को भेजा था उनकी रक्षा करने के लिए। वहां पर जाने के बाद अर्जुन और भीम को भेजा था, तो अर्जुन ने आकर वहां गंधर्वों को ललकारा के कौन है जिसने दुर्योधन को बंदी बना दिया, और हस्तिनापुर की कुछ स्त्रियां भी थी वहां पर, तो स्त्रियों को के लिए भी बोला कि आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है हस्तिनापुर की स्त्रियों को ना कष्ट पहुंचाने का, आप उन्हें वापस कर दो। तो इन्होंने बोला कि ये अभी मनुष्य है, गंधर्व थे वो, गंधर्वों ने बोला ये मनुष्य हमारा क्या बिगाड़ सकेगा, तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गंधर्व ऐसे उड़ने लगे और एक दूसरे के ऊपर मतलब ऐसे अर्जुन को और भीम को दिखा दिखा के उनके ऊपर उड़ रहे थे, और जैसे उड़ रहे थे और अपनी कला दिखा रहे थे, तो अर्जुन ने इस तरह से धनुष बाण चलाए, इस तरह से वो युद्ध कर रहे थे कि सब गंधर्वों को परास्त कर दिया, चाहे वो कहीं पर भी ऊपर उड़ रहे, नीचे उड़ रहे, बहुत ऊपर अलग अपने गंधर्व लोक में जाते, लेकिन अर्जुन के अंदर इतना पावर था, इतना बल था कि वो गंधर्वों के साथ भी युद्ध कर सके। यानी ये जो परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं, चाहे वो स्वर्ग के निवासी क्यों न हो, मैं उनको दंड दूंगा, तो ये इसलिए धर्म जो है वो कह रहे हैं, जो कि बेल के रूप में वो कह रहे हैं कि एतत्वा पांडवेयानां युक्त मार्ता भयम्। ये तो पांडवों पांडव वंशियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त शब्द कहें। आपने कोई बड़ी बात नहीं की, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि महाराज परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए हैं वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरंजना नहीं करने वाले नहीं थे। अतिरंजना मतलब ऐसा नहीं था कि बस बड़ा चढ़ा के बोल दिया है महाराज परीक्षित ने, अपनी बड़ाई मारते हुए बोल दिया, नहीं, वो ऐसा कर सकते थे कि जिस तरह से अर्जुन ने गंधर्वों को परास्त किया उसी तरह से एक बार देवराज इंद्र को परास्त किया। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र जो है वो तक्षक सर्प जो था उसका मित्र था। अब तक्षक सर्प जो था उसका पूरा जो परिवार था वो खांडोप्रस्थ में रहता था, और एक बार अग्नि देवता, उसी समय जो एक राजा ने बहुत सारे यज्ञ करवाए और अग्नि देवता को अपच हो गया, मतलब डाइजेशन सिस्टम उसका खराब हो गया और अनडाइजेस्टेड हो गया उसको, कि वो कोई भी, मतलब अग्नि देवता ने बहुत ज्यादा घी खा लिया था ना, तो इसके लिए उसका हाजमा खराब हो गया। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए अग्नि देवता और उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप इस खांडोप्रस्थ में जो बहुत सारे हर्ब्स हैं ना, जैसे जड़ी बूटियां इत्यादि, इनका सेवन करोगे तो आपका ये जो अपच का रोग है वो समाप्त हो जाएगा। तो तुम ऐसा करो कि खांडोप्रस्थ में जाकर जितने भी वहां के वृक्ष हैं उनको आप खाओ। अब अग्नि देवता कैसे खाएंगे, जला देंगे ना उनको। तो अग्नि देवता जैसे ही जाते थे उनको जलाने के लिए, उनको खाने के लिए, तो इंद्रभोरण वर्षा कर देते थे, क्योंकि वहां पर जो तक्षक सर्प रहते थे उनका जो परिवार रहता था, तो तक्षक की इंद्र से देव मित्रता थी, तो इंद्र उनको, ताकि तक्षक जो है ना वो वहां पर उनको कोई कष्ट ना हो, उनको वहां से जाना ना पड़े, इसलिए वहां पर वर्षा कर देते थे। तो अग्नि देवता जो है उन्होंने जाकर महाराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की कि अभी मेरा जो है ना स्वास्थ्य खराब हो गया, मुझे अपच हो गया है और मुझे यहाँ पर खांडोप्रस्थ के वन को है ना भस्म करना है और इंद्र ऐसे कर रहा है। तब उस समय अर्जुन ने अग्नि देवता को यह विश्वास दिलाया कि आप फिक्र मत करो, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, आप चलिए आप है ना खांडोप्रस्थ में जितने भी वो हर्ब्स हैं उनको आप सेवन कीजिए, मैं आपकी सुरक्षा करने के लिए चल रहा हूँ। तब अग्नि देवता ने अर्जुन को कहा, आप कैसे देवराज, वो देवराज है, सारे देवताओं का मतलब देव है, राजा है सब देवताओं का, आप उसको कैसे डिफीट करोगे। तब अर्जुन ने कहा कि आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप चलिए आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। और जिस जैसे ही अग्नि देवता ने उस खांडोप्रस्थ को जलाना शुरू किया, उसको कंज्यूम करना शुरू किया, तो अर्जुन ने क्या किया, पूरे खांडोप्रस्थ जो इतना बड़ा था उसमें अपने तीरों से इतना चक्र बना दिया, मतलब ऐसे चक्र बना दिया कि उसको पूरा पैक कर दिया, और अंदर जब इंद्र वर्षा कर रहा था तो एक बूंद भी पानी की उस खांडोप्रस्थ में, खांडव जो वन है उसके अंदर एक बूंद भी नहीं आ सक रही थी। पूरा अग्नि देवता ने आराम से सारे जड़ी बूटियों को खा लिया और इस तरह से उनको, उनकी जो बीमारी थी, उनका जो रोग था वो समाप्त हो गया, और सारे जितने सर्प थे वो भी वहां से भाग गए। अब भी जब इंद्र ने देखा कि ये अर्जुन जो है वो इस तरह से उसने किया है और इस तरह से वर्षा नहीं आ रही है, तो फिर क्योंकि तक्षक ने जाके इंद्र को बहुत बताया था, तो फिर इसलिए इंद्र अपना वज्र लेकर आया और अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। लेकिन यहाँ पर आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि इंद्र और अर्जुन का जब युद्ध हुआ, दूसरे भी देवी देवता आए लेकिन सबको अर्जुन ने परास्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे और अर्जुन रथ पे बैठ कर युद्ध कर रहा था। तो यहाँ पर ये बताने का तात्पर्य ये है कि अर्जुन यानी पांडवों में इतना पावर था कि वो बड़े बड़े देवी देवताओं को, यहाँ तक कि एक बार शिव जी को भी अर्जुन ने परास्त किया था। एक बार शिव जी एक आखिटक, एक शिकारी का वेश धार कर जब आए थे तो भी अर्जुन ने उनको परास्त कर दिया था, और जिसके कारण शिव जी ने उनको पाशुपत अस्त्र दिया था। तो यहाँ से यह हम समझ सकते हैं कि महाराजा परीक्षित जिस कुल के थे, जिन पांडवों के कुल के थे, तो उनके अंदर इतना बल था कि वो बड़े बड़े देवताओं को भी परास्त कर सकते थे। इसलिए क्योंकि वो धर्म पर टिके हुए थे और दूसरी बात ये है कि जो इस एक तो उनके अंदर इतना ज्यादा बल था, और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, ये शाम गुण गुण है कृष्ण, ये जो उनके जो गुण थे उनके अंदर इतनी योग्यताएं थी कि उनके इन गुणों को देखकर, उनके धर्म को देखकर, उनकी पवित्रता को देखकर दोत्यादव भगवान कृतः, ये शाम गुण गुणाय कृष्णो दोत्यादव भगवान कृतः, कि वो भगवान जो कि संपूर्ण जीवों को के स्वामी है, संपूर्ण लोकों के स्वामी है, वो भी उनकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। दोत्यादव कि वो कभी भगवान जो है वो कभी पांडवों के दूत बन जाते थे, तो कभी सारथी बन जाते थे, तो कभी उनके मित्र बनकर उनको संरक्षण प्रदान करते थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी पवित्रता थी, इतना धर्म था, कृष्ण के लिए इतना प्रेम था कि भगवान भी उनके पास सेवा करने के लिए आते थे। और इतना सुंदर एक श्लोक था जब हम लोगों ने पढ़ा था, परीक्षित महाराज जब जाते हैं अपने दिग्विजय करने के लिए, अपने पूरे राज्य में घूमने के लिए जाते हैं, तो सब जो नगरवासी हैं वो परीक्षित महाराज की सराहना करते हुए एक बहुत ही सुंदर श्लोक उच्चारण करते हुए कहते हैं, सारथ्य पारषद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणीतं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतः शरणारविन्दे। कि वो भगवान जो कि सारे लोगों को पालने वाले हैं, जो सबके स्वामी हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का सारा जगत पालन करता है, स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणीतं च विष्णु, जगत जिस भगवान का को प्रणाम करता है, वो भगवान जब पांडवों का स्नेह देखते हैं, जब पांडवों की विनम्रता देखते हैं, जब पांडवों का प्रेम देखते हैं, तो क्या करते हैं, सारथ्य पारषद सेवन सख्य दौत्य, कभी उनका सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कभी उनका शांति दूत बनकर उनके जो विपक्षी हैं उनके पास चले जाते हैं, उनकी सेवा करने के लिए सदैव तैयार होते हैं, कभी मित्र बनकर, तो कभी सेवक बनकर, तो कभी दूत बनकर, वीरासनानुगमन, वीरासन मना कभी जब युद्ध हो रहा होता था तो रात को जब पांडव रात में जब थक के सब सो रहे होते थे, तब भी मेरे कृष्ण सोते नहीं थे और पहरा देते थे, वहां पर पहरा दे रहे होते थे। तो ये भगवान जो त्रिलोकी के नाथ है, वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, कभी उनके लिए ड्राइवर बन जाते हैं, तो कभी पोस्टमैन बन जाते हैं, तो कभी वॉचमैन बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये भगवान के अंदर इतना प्रेम है अपने भक्तों के लिए, जिस तरह से कृष्ण शक्तिमान है और हर एक भक्त जो है वो ये सोचता है कि उनकी सेवा तो जगत करता है, परंतु जीव का तो स्वरूप ही भगवान की सेवा करना है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, उसी तरह से कृष्ण जो है उनको अगर देखा जाए तो उनका स्वरूप क्या है जानते हैं, कृष्णेर स्वरूप हुए भक्तेर नित्य दास। कृष्ण तो अपने भक्त की किस तरह से मैं सेवा करूं, किस तरह से मैं उसे आनंद पहुंचाऊं, बस उसी के विषय में सोचते रहते हैं। तो इस तरह इन दोनों में होड़ लगी रहती है, कॉम्पिटिशन रहता है कि भक्त सोचता है कि मुझे अपने भगवान की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना है, और भगवान सोचते हैं कि मैं कैसे अपने भक्त को प्रसन्न करूं। तो यहाँ पर दो तरह से पांडवों की है ना महिमा का बखान किया गया है, कि एक तो वैसे उनके अंदर बल था, धर्म था, सत्ता थी, और वो इतने धर्म परायण थे कि वो जो है वो गंधर्वों से, देवताओं से सबसे युद्ध में हमेशा सबको परास्त कर सकते थे, और दूसरी बात उनके इन सब गुणों से, उनके जो कृष्ण प्रेम के कारण, उनका जो स्निग्धेश, वो जो इतना कृष्ण के प्रति शरणागत होते थे, जिसके कारण भगवान भी उनकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो भगवान का साथ भी उनके साथ है और उसके अतिरिक्त वो धर्म पर है, इसी के कारण भगवान उनके साथ है, तो फिर उनके पास डबल पावर है। एक यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी भी हों तो उनके कठोर शासन से बच नहीं सकेंगे। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे क्योंकि भगवत भक्त भगवान के ही समान और कभी कभी उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होते हैं। और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा हो पाना कठिन हो, लेकिन भगवान की कृपा से वह ढंग से पूरा हो जाता है। यानी भक्त जो है उस वो भगवान का उसको पूरा प्रोटेक्शन प्राप्त होता है और भगवान की कृपा इतनी होती है कि भक्त भी भगवान के समान जो है वो शक्तिशाली, भगवत भक्त भगवान के ही समान और कभी कभी उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। जैसे भगवान ने जरासिंह ने जब बहुत सारी दफा हमला किया था 7 दफा, लेकिन भगवान उसको कभी मारना चाहते नहीं थे, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी भगवान के द्वारा वो नहीं मरे। और भगवान ने ये श्रेय किसको दिया? भीमसेन के। हालांकि भीमसेन के अंदर भगवान के जितना बल नहीं था, लेकिन भगवान अपने भक्तों को श्रेय देते हैं तो कभी कभी भक्त भगवान से भी अधिक बलवान। कभी कभी कोई ऐसे ना समझ लोग सोच सकते हैं ना, देखो कृष्ण से तो नहीं मरा, भीम ने उसको मार डाला। उसी तरह एक बार क्या हुआ कि महाराज उग्रसेन के दरबार में एक ब्राह्मण आए और जब उनके क्योंकि उस समय में राज्य ऐसा होता था कि किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। अकाल मृत्यु मतलब जब तक उसके पिताजी उसके दादा जिसके जिंदा होते थे तो कभी बच्चों की मृत्यु नहीं होती थी। पहले बड़ों मतलब सीरीज में पहले दादा मरेगा, उसके बाद बाप मरेगा, उसके बाद बच्चा मरेगा, ये इस तरह से होता था। इसके अतिरिक्त मतलब उनके राज्य में कोई भी इस तरह से अपराध नहीं होते थे, सब लोग संतुष्ट होते थे। तो उस ब्राह्मण के साथ क्या हो रहा था कि उसका जो भी पुत्र पैदा होता था वो मर जाता था, दूसरा पुत्र पैदा होता था तो वो मर जाता था। तो वो आके उग्रसेन की सभा में जाके बोलने लगा कि तुम कैसे राजा हो, ये राजा का कर्तव्य है कि जो उसकी प्रजा है उसको इन दुखों से बचाए, ये जो आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख है उनसे उनकी रक्षा करे। ये राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को चोरों लुटेरों से इनसे सबसे बचाए। और तुम कैसे राजा हो, तुमने कितने अपराध किए जो तुम्हारे राज्य में मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, मैं जिंदा हूं और मेरा जो भी संतान उत्पन्न होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, इसका कारण आपके राज्य में ही कोई कमी होगी, इसी के कारण ऐसा हो रहा है, वरना तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राजा पवित्र होता है तो उसके राज्य में किसी भी जीव को अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जब वहां पर कृष्ण भी बैठे थे और अर्जुन भी बैठे हुए थे, लेकिन अर्जुन से ये कृष्ण सुन रहे थे, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, अर्जुन से सहन नहीं हुआ और उस समय उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण देवता आप चिंता मत कीजिए, आपकी संतान की सुरक्षा मैं करूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ आपकी संतान की सुरक्षा करने के लिए। तो उस समय जब उनकी पत्नी को संतान उत्पन्न होने वाला था उस समय अर्जुन ने तो जहां पर संतान उत्पन्न होने वाली थी वहां पर अर्जुन ने अपने तीरों से पूरा एक चक्र बना दिया ताकि कोई भी उसके अंदर ना जा सके। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इस बार भी जो संतान उत्पन्न हुई उसकी भी मृत्यु हो गई। तब अर्जुन को आके ब्राह्मण ने कहा तुम भी नपुंसक हो, तुमने मुझे वचन दिया था कि मेरी संतान नहीं मरेगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर होते हुए भी देखो मेरी संतान मर गई। अभी बताओ तुम्हारे इस गांडीव धनुष रखने का क्या फायदा जब तुम मेरी संतान को बचा नहीं सके। तब अर्जुन को बहुत ज्यादा दुख हुआ और अर्जुन कृष्ण के पास गए, कृष्ण से कहा कि अगर मैं इस ब्राह्मण की संतान को वापस ना लौटा सका तो मैं अपनी समाधि नहीं लूंगा। भगवान अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान अपने भक्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और अर्जुन को कहा नहीं अर्जुन चलो इसके पुत्र को लेकर आते हैं। तो इस सारी लीला से हमें ये पता चलता है कि भले ही भगवान के भक्तों के अंदर एकदम मेरिकल पावर होता है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु उनके सारे पावर का जो डिपेंड करता है वो भगवान की कृपा पर करता है। अगर अर्जुन के अंदर पावर होता तो अर्जुन कैसे नहीं उस संतान की रक्षा कर सकता, लेकिन वो सारा पावर जो था वो भगवान की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा चलो ठीक है हम ढूंढ के आते हैं। तो पूरे सारे संसार में पूरे विश्व में उसने उस ब्राह्मण के बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया मगर कहीं
रहे थे तो फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें महाविष्णु के पास ले गए कि अब उनकी मृत्यु हुई है तो महाविष्णु के पास होंगे। तो महाविष्णु के पास गए तो ब्रह्मन के सारे पुत्र जितने की मृत्यु हुई थी तो वहां पर बैठे हुए थे। तब महाविष्णु ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि कृष्ण, मैं आपके दर्शन करना चाहता था, मैं आपसे मिलना चाहता था, इसीलिए मैंने यह ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ पर बुलाया। बाकी उग्रसेन महाराज और आप सबकी जो राज्य है वो एकदम पवित्र है, आप भले ही इन ब्राह्मण के पुत्रों को लेके जाइए, मुझे केवल आपके दर्शन करने की अभिलाषा थी जिसके कारण मैं इन पुत्रों को यहाँ पर लेकर आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उन पर भगवान की इतनी कृपा होती है, इतनी कृपा होती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और एक बार अगर भगवान के भक्तों ने कोई प्रतिज्ञा ले ली, कोई वचन ले लिया, तो उसको पूरा करना भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। भगवान के प्रति जो भक्त की अनन्य भक्ति होती है वो उसके कारण भक्त जो है वो पूर्ण शरणागति हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा भगवान के प्रति शरणागति द्वारा भगवान को सारथी बनने या कभी कभी पत्रवाहक बनने के लिए बाध्य कर दिया। येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृत, कि वो कभी दूत बन जाते थे, कभी शांति दूत बनकर उनके जो शत्रु हैं उनके पक्ष में जाकर उनको शांति का संदेश देने के लिए आते थे, कभी सारथी बन जाते थे, तो कभी उनके दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है कि क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता है। एक जीव आत्मा का काम यही है कि मैं किस तरह से भगवान की सेवा करूं, बस अपने विषय में उसे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब वो जीव जो ये सोचता है कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, तो फिर भगवान भी सदैव यही सोचते रहते हैं कि मैं कैसे अपने भक्त को प्रसन्न करूं। तो भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पौत्र जो ये महाराजा परीक्षित हैं, तो वो भी अपने ही पूर्वजों की तरह, अपने पितामह अर्जुन की तरह और अपने पूर्वजों की तरह पांडवों की तरह शुद्ध भक्त थे, अतएव भगवान उनके साथ सदैव रहे। जब पहली बार अभी तक उनका जन्म नहीं हुआ था, माता के गर्भ में थे, तो जब अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था तब भी वे उनके पास थे, तब भी भगवान ने जाकर माता के गर्भ में उनकी रक्षा की। तो भक्त जो होता है वो सदैव भगवान के संरक्षण में होता है, अतएव महाराज द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक ना था। भगवान महाराज ने एक बार कह दिया, ऐसा भक्त जो भगवान के ऊपर पूरा निर्भर होता है, जो भगवान के संरक्षण में होता है, तो जब वो एक बार कह देता है कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, तो निरर्थक नहीं है। वो अगर सामर्थ्य नहीं भी होगा आपका दुख दूर करने में, तो भी भगवान अवश्य उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो ये महाराज परीक्षित ने जो धर्म को बोला था कि मैं उसको अवश्य दंड दूंगा जिसने कि आपको ये कष्ट दिया है, तो धर्म रूपी बोल के धर्म रूपी जो बेल है वो बोल रहा है कि एतद्वः पांडवेयानां युक्त माता भय वच, कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल पांडव वंशियों के लिए बिल्कुल सही है, पांडव वंशी जो हैं उनके लिए युक्त है, उपयुक्त है, क्योंकि आप जैसे भगवत भक्त हमेशा मुझ जैसे दुखियों के दुख दूर करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, उनको आनंद पहुंचाने के लिए संरक्षण प्रदान करते रहते हैं, और आप जैसे जो शरणागत भक्त होते हैं वो तो जो कार्य करना चाहते हैं, ये श्याम गुण गणे कृष्णो दो त्यादव भगवान कृत, तो साक्षात भगवान भी उनके उस कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायता करते रहते हैं। तो यहाँ पर बेल रूपी जो धर्म है वो बता रहा है कि भगवान जो है वो हर एक वस्तु के कंट्रोलर है, हर एक वस्तु को कंट्रोल करने वाले हैं। जैसा कि भागवत कहती है, मद भयात वाति वातोयम, सूर्य तपंती मद भयात, दहत इंगली दहत अग्नि वर्षत इंद्र, कपिल देव अपनी माता को बताते हैं कि जिस प्रकार इस संसार में हर चीज संतुलन से हो रही है, जो सूर्य चमक रहा है, तपिश दे रहा है, या वर्षा हो रही है इंद्र से, या जो वायु बह रही है, या जल प्रवाह हो रहा है, वो सब इसीलिए क्योंकि सब मेरे कंट्रोल में है, मेरे भय के कारण तो सब कुछ हो रहा है। तो जो सारा संसार, सारी प्रकृति, सारा विश्व जिस भगवान के कंट्रोल में है, और वो भगवान क्या है, वो भगवान अपने भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। जो भक्त भगवान के सर्वथा शरणागत होते हैं उनके कंट्रोल में, जैसे कि महाराज परीक्षित और उनके पूर्वज। तो यहाँ पर धर्म महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि आपने जो कहा है वो सर्वथा उचित है, आप कर सकते हो। आपने जो मुझे आश्वासन दिया है कि जिसने मुझे कष्ट पहुंचाया है उसको आप अवश्य दंड दोगे, तो मुझे यकीन है कि आप अवश्य ऐसा करोगे, क्योंकि आप जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हो, और भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हर एक कार्य करने में उनकी पूरी पूरी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर धर्म ने महाराज परीक्षित को स्वीकार किया है कि वो आप जरूर मेरी बात, मेरे जिसने मुझे कष्ट पहुंचाया उसे अवश्य दंड दोगे, और आगे वो उनके विषय में बताएंगे कि वो कौन है जिसके कारण मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ। बहुत ही सुंदर वार्तालाप है महाराजा परीक्षित और धर्म के विषय में। आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी एक विनती है कि मेरे लिए थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं। मैं भागवत करना चाहती हूँ, मैं भागवत को के श्लोकों को पढ़कर आप सबको सुनाना चाहती हूँ। बस आप लोग प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे इस कार्य में मेरी सहायता करें और मैं अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।